आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी और आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है शासक और इमारतें, मतलब कौन से रूलर ने कौन सी इमारत बनवाई थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चित्र एक में कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। मतलब ये जो आपको यहाँ पिक्चर दिखाई है, ये कुतुब मीनार का जो फर्स्ट जो छज्जा है उसको, मतलब फर्स्ट जो आप कह सकते हैं फ्लोर है उसको दिखाया जा रहा है, और इसके नीचे ये जो छोटी छोटी कारीगरी की गई है इसको देखिए, ये बताया जा रहा है कि कितनी अच्छे तरीके से की गई है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? दो अलग अलग यहाँ पर पट्टियां बनी हुई हैं जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। मतलब बाहर का जो पूरा इनका शेप है ये गोल और ट्रायंगुलर में बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप लिख रहे हो तो बहुत ध्यान से लिखना पड़ता था, जो कि एक्सपर्ट कारीगर जो होते थे बस वही कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों से बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? मतलब बहुत कम इमारतें ऐसी होती थी जो पत्थर और ईंट से बनी होती थी। अब आप देखिए उनमें क्या रिएक्शन हुआ होगा 13वीं सेंचुरी वाले लोगों का जिन्होंने कुतुब मीनार देखा। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम के भव्य जैसे किले महल तथा मकबरे थे। मतलब फर्स्ट कैटेगरी की जो इमारतें थी उसमें ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको सारा आराम, सारा मतलब लग्जूरियस लाइफ जिसमें आप जी सकते हो बिल्कुल, वो सारी चीज़ें थी जैसे किले महल और मकबरे। इस चित्र एक के डिस्क्रिप्शन पर आइए। पिछले पेज में कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप के वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलालुद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने ये पूरा बनवाया, देखिए कितने सारे लोग हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। मतलब दूसरी कैटेगरी में मंदिर और जितने भी पब्लिक प्लेसेस जो थी उस टाइप की बिल्डिंग्स थी। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। मतलब राजाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे और उनकी सहूलियत के लिए अलग अलग इमारतों का निर्माण करवाएंगे ताकि उनको सहूलियत भी हो और उनकी प्रजा उनको बहुत तारीफ भी करे उनकी। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए थे। मतलब इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन का काम था ये बहुत अमीर व्यापारी और ऐसे लोग भी करवाते थे मंदिर मस्जिद वगैरह का, और उनका जो उनकी खुद की इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां थी उसका जो हमें एविडेंस मिला है वो 18वीं सेंचुरी से मिलना शुरू हुआ है। यहाँ साइड में आइए पर्पल बॉक्स पर। आगरा किले के निर्माण में लगे श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। मतलब इतने लोग लग गए थे, सोचिए 10,000 लोग लग गए थे उसे बनाने के लिए। अब आ जाइए अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण से प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टी रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन होता था जब हम एक विस्तृत अधिर रचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। मतलब छत के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे आज हम बहुत इजीली बना सकते हैं, उस टाइम पर इतना इजी नहीं था, और जो वो लोग बनाते भी थे उसमें उनका एक अलग ट्रेडिशन दिखता था। यहाँ देखिए साइड में अधिरचना का मीनिंग है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर कैसे क्या बनेगा उस टाइम पर, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता था। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वस्तुकार भवन में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वस्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टेढ़ा निर्माण कहलाई जाती थी। मतलब 7th और 10th सेंचुरी के टाइम पर बहुत सारे दरवाजे, कमरे, खिड़कियां सब कुछ बनने लगे थे, और जिस वस्तुकला से ये बनते थे उसको क्या बोला जाता था, अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया। मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्निक थी इन सभी चीजों के निर्माण में यूज की गई। चित्र 2 को देखिए। दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मतलब एक हिस्सा है ये वहां की मस्जिद का। चित्र 2 देखिए। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का इस्तेमाल, तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये इस्तेमाल की गई थी ऐसी टेक्निक। अगले पेज पर आ जाइए। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरीय महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। मतलब ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर जो पूरा ये बना हुआ है, चित्र 3 का जो पहला भाग है पूरा, ये किसने बनवाया था, राजा धंगदेव ने। चित्र 3 का मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता है। मतलब यहाँ पर आपको एक मैप दिखाया गया है, प्लान जिसे कहते हैं हम किसी भी जगह का, तो उसके बारे में बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग ये मंदिर बना था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। मतलब जो मुख्य मंदिर में जो मूर्ति होती थी वो इसके बीचों बीच रखी जाती थी, और कोई भी अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी पूजा, कोई भी चीजें होती थी ये यहीं पर होती थी, और यहाँ पर सिर्फ राजा और उनके निकटतम को आने का, एकत्रित होने का सिर्फ अधिकार था, और कोई नहीं आ सकता था मंदिर के गर्भगृह में। खजुराहो समूह के राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। मतलब जो खजुराहो के जो राजकीय मंदिर थे वहां पर नॉर्मल लोगों को जाना अलाउड नहीं था। चित्र 4 देखिए। तंजावूर के राजेश्वर मंदिर का शिखर समय के मंदिरों से सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि इन दोनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। मतलब ये जो तंजावूर का जो राजेश्वर मंदिर था, इसकी जो ऊपर की जो सबसे ऊंची जो शिखर जो होती है, हाईएस्ट पॉइंट, उस टाइम पर बनाना सबसे मुश्किल था, और ये सबसे ऊंची शिखर मानी जाती थी, सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता था। अब ये काम आसान इसलिए नहीं था क्योंकि उन दिनों क्रेन नहीं हुआ करती थी जो हम आज यूज करते हैं, और 90 टन का पत्थर एक आदमी खुद ऊपर लेकर जाए वो पॉसिबल ही नहीं होता था। इसलिए इस काम के लिए वस्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। मतलब ऊपर तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया जा गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय के बाद तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। मतलब फिर वो जो रास्ता इन्होंने बनाया था उसको तोड़ दिया था बाद में, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन का टाइम था वो लोगों को बहुत टाइम तक याद रहा क्योंकि चढ़ाईदार रास्ता बनाकर इन लोगों ने बनाया था ये मंदिर। वहां का एक गांव है मंदिर के पास जिसका नाम है चारुपल्लम, जिसका मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स। दो मंदिरों की शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजेश्वर मंदिर का शिखर कांदरिया मंदिर महादेव मंदिर के शिखर से दुगना ऊंचा है। हाँ ये दुगना ऊंचा है क्योंकि ये बहुत ऊंचा बनाया गया था, उस समय का सबसे ऊंचा मंदिर था। अगले पेज पर आ जाइए। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपको 12th सेंचुरी में दिखने लग जाएंगे। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिर रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, वस्तुकला का या चापाकार रूप था, मतलब इसमें जो कंस्ट्रक्शन का जो टाइप था उसमें चेंज आया था। चित्र 5 आप देखिए। पहला, मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य से डार्ट अधिर रचना के भार को मेहराब की आधारशील पर डाल देती है, मतलब ये ढांचा जैसा यूज किया जाने लगा था। चित्र 2 क व 2 ख की तुलना चित्र 5 क और 5 ख से करिए। सेकंड, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचा और निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें, मतलब ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पर चूना का पत्थर जो था और सीमेंट का प्रयोग ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये एक बहुत ही फाइन क्वालिटी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, तो इस वजह से बहुत अच्छे विशाल ढांचे बनते थे और उनको कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत ईजी हो जाता था। चित्र 6 में आप देख सकते हैं। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी इसके अकबरनामा से लिया गया है, मतलब उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो कैसे वो रास्ता बनाते थे फिर उसके बाद सब सामान ऊपर लेके जाते थे। चित्र 5 ख, मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। तो यहाँ पर ये दूसरा जो टेक्निक इन लोगों ने अपनाया था डार्ट वाला वो दिखाया जा रहा है, और ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली की। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स, बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। तो पत्थरों को ढोने के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया है, लटकाने वाले साइड में वो जो तराजू जैसे होते हैं वो यूज कर रहे हैं, और एक चढ़ाईदार रास्ते का यूज कर रहे हैं। नाउ कम टू मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण, तो मतलब जो गाय भैंस को रखने की जो जगह होती थी मंदिरों मस्जिदों का जो निर्माण था वो कैसे किया गया। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वह उपासना के स्थल थे, वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख ने इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था, मतलब हमें ये बताया जा रहा है कि जो मंदिर और मस्जिदों का उस टाइम कंस्ट्रक्शन किया जाता था बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता था क्योंकि ये लोगों की भक्ति का स्थल होता था, लोग यहाँ पर आके अपनी प्रार्थनाएं गाते थे, सब करते थे, तो इसलिए इसे बहुत सुंदर बनाया जाता था। फिर जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए राजेश्वर राज राजेश्वर का मंदिर, इसमें ऐसा पता चलता है कि जो इस मंदिर का निर्माण है वो राजा राजदेव ने करवाया था, और आप ध्यान देंगे इसमें कि राजा राजदेव और राज राजेश्वरम जो भगवान जिनका मंदिर इनने बनवाया था दोनों नाम मिलते जुलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस राजा ने अपना नाम इनके नाम पर रखा था, वो मंगलकारी मानते थे इस नाम को और वो अपने आप को एक ईश्वर के रूप में देखना चाहते थे, तो इस हिसाब से एक देवता राजा राजदेव ने दूसरे देवता का सम्मान किया और उनके लिए मंदिर बनवाया। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थनों के देवी देवता थे, मतलब जितने भी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण है वो राजाओं ने करवाया था, मंदिर के बाकी जो छोटे देवता थे लघु देवता थे वो शासक के सहयोगियों तथा मतलब जो उनके दरबार में जो काम करते हैं उनके जो सहयोगी हैं उनकी और अधीनस्थों के मतलब जो उनके अंतर्गत आते हैं उनके देवी देवता होते थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वो राजकीय मंदिरों में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मतलब जिस प्रकार वो अपने अपने भगवान के सामने प्रार्थना करते थे, तो ऐसा लगता था कि देवताओं का जो न्यायप्रिय शासन है, जो देवता करते हैं, उनको धरती पर ला दिया गया हो। यहाँ पर्पल बॉक्स पे आइए, साइड में एक शाही वास्तुलिपि, वास्तुशिल्पी, मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है, मतलब जो धर्म भी चलाता है और साम्राज्य भी संभालता है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मतलब जितने भी ये मुस्लिम लीडर्स थे, जितने भी रूलर्स थे, वो खुद को भगवान के अवतार होने का तो कोई ऐसा नहीं बोलते थे कि हम भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनके जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने उनकी फारसी में वर्णन जिन्होंने किया है, बुक्स वगैरह लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है उनको अल्लाह की परछाई के रूप में। यहाँ देखिए चित्र 7, अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 1656 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना, तो ये बनवाया था उन्होंने, उसके बारे में है। दिल्ली की एक मस्जिद की अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था, एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। मतलब ऐसा कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने, यानी कि भगवान ने, अलाउद्दीन को शासक इसलिए बनाया था क्योंकि उसके जो अतीत के जो महान विधिकर्ता थे सुलेमान और मूसा, उनकी क्वालिटीज उसमें मौजूद थी, और जो सबसे ज्यादा महान विधिकर्ता थे वो खुद अल्लाह है क्योंकि उन्होंने पूरे संसार को बनाया और एक संतुलन बना के रखा। साइड में देखिए जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। मतलब फारसी जो शब्द है आबाद या आबादी, जो कि आब शब्द से निकले, उसका मतलब है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों है। मतलब आबादी, जिसे आज हम जनसंख्या समझते हैं बस, उसके बहुत और भी मीनिंग है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। मतलब जो पावरफुल राजा थे, जो पावर में थे, उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना मॉरल जो उनका राइट था उसे यूज किया, और जितने भी ये सारे निर्माण कराते थे वो मंदिर मस्जिदों के, उससे पता चलता था कि वो अपने ईश्वर के साथ कितने घनिष्ठ संबंध में है। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। मतलब ये जो उद्घोषणाएं थी, जो इन लोगों के कार्य थे, वो पॉलिटिकल रूप भी देने लग गई थी। जो धर्म के अनुयायी होते थे, विद्वान होते थे, उनको भी इन लोगों ने संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया था अपने राज्य में, और बहुत सारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने का भी प्रयास किया था। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली, मतलब काफी बढ़ोतरी मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। मतलब ऐसा नॉर्मली सोचा जाता है कि एक न्यायप्रिय शासक वही हो सकता है जहां पर लोग खुश हो सकते हैं और पर्याप्त वर्षा हो सकती है, तो इसलिए जो हौज हैं और जलाशय हैं उनका निर्माण किया गया ताकि पानी अच्छे से प्रजा को मिल सके। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के कुहान के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। मतलब इल्तुतमिश ने एक तालाब बनवाया था जिससे उसकी बहुत प्रशंसा की गई थी। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, चित्र 7 में जामी मस्जिद के एक छोटे हौज पर ध्यान दे, अथवा गुरुद्वारे सिखों को एकत्रित होने और उपासना का स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। मतलब कुछ तालाब वो छोटे छोटे मंदिरों और ऐसे भी बनवाते थे ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चित्र 8 देखिए आप, हरमंदर साहब, स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो तो हम सभी ने देखा है पिक्चर्स में, तो वहां पर भी ये जो बनवाया गया था ये राजाओं द्वारा बनवाया गया सरोवर था। अब आ जाइए, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? अब मंदिर इतने अच्छे से जब बनाए गए थे तो उनको खत्म क्यों करने लग गए थे लोग, उसके बारे में हम जानेंगे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। देखिए, जो राजा मंदिर और जो भी निर्माण शक्ति अपनी दिखाने के लिए और भी जो चीजों का निर्माण करवाते थे, अपनी शक्ति और धन का गौरव दिखाने के लिए करते थे। और होता क्या था, अगर वो किसी दूसरे राज्यों पर अगर आक्रमण कर रहे हैं तो वो ऐसी इमारतों को अपना निशाना बनाते थे जहां पर बहुत ज्यादा धन हो, और मंदिर वॉज वन ऑफ देम। नवी शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यान राजा श्री वल्लभ के श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 1831 से 1851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक ने आत्मभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जब 9 सेंचुरी के शुरुआत में जो पांड्यन राजा थे उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था, राजा सेन प्रथम को उन्होंने हरा दिया था, और इनके सब्जेक्ट में, इनके बारे में जो बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार हैं वो ये लिखते हैं कि वो सारी चीजें ले गए, सारे रत्न वगैरह सब ले गए, स्वर्ण की मूर्तियां ले गए और बुद्ध की भी मूर्ति ले गए थे वो। तो जो सिंहली के शासक थे उनको आत्मभिमान था और वो उनको बहुत बुरा लगा, तो उसका बदला लिया जाना उन्होंने बहुत सही समझा। तो उन्होंने मदुरई जो कैपिटल था वहां पर आक्रमण कर दिया और अपनी उस मूर्ति को वापस लेकर आने का प्रयास किया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम के अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों को से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। तो उसी तरीके से हमें दूसरा एग्जांपल बताया जा रहा है, 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब चोल राजा जो कि राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने जब अपनी राजधानी में शिव मंदिर बनवाया था तो जिन राजाओं को उन्होंने पराजित किया था उनसे जब्त की गई जो प्रतिमाएं थी उनसे उस मंदिर को भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पटिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। मतलब एक लिस्ट अगर हम बनाए तो ये सारी उसमें चीजें सम्मिलित थी जो उन्होंने ली थी वहां से। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में उन्होंने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। गजनी का जो सुल्तान था महमूद, उसने क्या किया था, भारत में अपने सैनिक अभियान चलाए और उस टाइम पर सारे मंदिरों को अपवित्र कर दिया और सारे राजाओं को हरा कर मंदिर से सारा पैसा और मूर्ति को लूट के ले गया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। उस टाइम पर यह बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, लेकिन उसने जिस तरीके से मंदिरों को ध्वंस किया था और मेनली जो सोमनाथ मंदिर था उसको ध्वंस किया था, तो उसके उस टाइम पर वो एक इस्लामी योद्धा के रूप में माना जाता था। वो चाहता था कि मैं ऐसा माना जाऊं। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति से ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। मतलब मेडिवल टाइम पर जो पॉलिटिकल जो इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें ज्यादातर शासक क्या करते थे, अपनी पॉलिटिकल पावर से और अपनी सैनिक सफलता के प्रदर्शन को दिखाने के लिए जो पराजित शासक होते थे उनकी जो मंदिर की मूर्तियां थी, धन रहता था, वो सब कुछ लूट लेते थे और उसे नष्ट कर देते थे। ये भी नहीं कि मतलब मूर्तियों और पैसे लेकर मंदिर छोड़ दें, वो मंदिर को भी तोड़ डालते थे पूरी तरीके से। यहाँ देखिए चित्र 9 दिया है साइड में, मुगल चार बाग। पहला, हुमायूं के मकबरे का चार बाग दिल्ली 1562 से 1571, मतलब ये चार बाग बनाया गया था जो कि हुमायूं का मकबरा था। सेकंड, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग 1620 और 1634, तो यहाँ पर ये जो चार बाग बनाए सीढ़ीदार चार बाग है। फिर तीसरा है, लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637, तो यहाँ ये अलग अलग टाइप के चार बाग के बारे में आपको दिखाया गया है। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। बहुत अलग थी, क्योंकि राजेंद्र प्रथम जो थे वो इस तरीके की हरकत नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी मूर्तियां लेकर आने में ज्यादा विश्वास रखते थे, और जो महमूद गजनी था, महमूद ऑफ गजनी जो था, वो क्या करता था, वो सब मूर्तियां वगैरह सब जब्त करके ले जाता था और उनको ध्वंस कर देता था। आप सोचिए, अगर कोई सोने की मूर्ति ले जा रहा है तो वो अपने मस्जिद में तो उसे रखेगा नहीं, वो क्या करता था, उनको पिघला कर और सोना प्राप्त कर लेता था। अब आ जाइए बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। मतलब मुगल टाइम पर ये जो निर्माण था ये बहुत ज्यादा हो गया था, और इस टाइम तक ये लोग कंस्ट्रक्शन में और जितने भी इस टाइप के काम थे ना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। मतलब अपनी खुद की बायोग्राफी में बाबर ने ये बताया है कि उसको औपचारिक बाग और उसकी योजना और उसको बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार बागों की विभाजित आयातकार आहते में स्थित थे। मतलब ये दीवार रहती थी इनके चारों तरफ और ये चार बागों में विभाजित आयातकार, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से ये वहां पर रहते थे उसके आहते में, आंगन में। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। मतलब जो खाका था, जो प्लान जैसे हम बोलते हैं, प्लान मैप जो बोलते हैं, वो तैयार किसने किया था, बाबर ने खुद तैयार किया था। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते हैं। मतलब ये चार इक्वल हिस्सों में बटे होते हैं, इसलिए इनको चार बाग कहा जाता है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली चित्र 9 दिखे में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो मतलब ये चार बाग बनाने का जो ये सिस्टम था, ये किसने शुरू किया था, ये किया था अकबर ने। तो उसके बाद कुछ बहुत सुंदर चार बाग बने थे कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। आगरा का जो ताजमहल है वहां पर भी चार बाग है, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ साइड में पिक्चर दिया हुआ है, चित्र 10। काबुल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी, ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चार बागी योजना की विशेषता बनती थी। मतलब यहाँ पर पानी भर दिया जाता था और ये जो टैंक जैसा होता था, यहाँ से फाउंटेन निकलता था। इस तरीके के जो ये सब लोग निर्माण करवाते थे, वो अपनी खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करवाते थे। अगर अपने अहाते में करवा रहे हैं, अगर इस टाइप के बाग बनवा रहे हैं, तो ये जितने भी मुगल शासक थे ना, इनको बहुत पसंद था ये बागान और ये सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद थे, तो ये अपनी संतुष्टि के लिए बनवाते थे। और इसका जो बहुत सबसे पहले जो चलन शुरू किया था वो अकबर ने किया था, उसकी देखा सीखी सब लोगों ने वैसे का वैसा बनाया था। और ये चार बाग क्यों कहलाते थे, क्योंकि चार अलग अलग हिस्सों में बांटे जाते थे ये, और उनके बीच में नहर जैसा एक रास्ता होता था जिसमें से पानी बहता रहता था, और बीच में फाउंटेन टाइप का था। उस जमाने में भी फाउंटेन बनाने की एक अलग टेक्निक थी। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास से हम आगे से इसमें शुरू करेंगे। टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।